अध्याय 10 राम काज छन भंगु सरीरा। श्री सीताराम का मंदिर टूटा, महंत सीताराम ने गोहार लगाई और बाबू सीताराम लुट गए। चूने में दही मिलाकर उसे छानने में व्यक्त बेनी तमोली के मस्तिष्क में खंडहर की भिखारिन के उक्त शब्द गूंजते रहे। गत रात पहले ही मुलाकात में उस भिखारिन ने बेनी के मन पर गहरा प्रभाव डाला था। उसकी बातों से बड़ी शांति मिली थी। वह बार बार सोचता था कि भिखारिन की यह बात कितनी सच है कि मन की आग तिल तिल जिगर जलाने से ठंडी होती है। इधर चूना भी तैयार हो गया। कत्था, चूना और सुपारी के मित्र पात्रों को पान की दौरी में करीने से सजाकर और दौरी कमर पर रखे बेनी घर से बाहर निकला। नित्य की भांति जब वह दुलारी के घर के सामने वाले चबूतरे पर आया तो उसने देखा कि उसके स्थान पर आज पुलिस ने कब्जा कर रखा है। उस सकरी गली में जन समुद्र उमड़ आया है। जनता के चेहरे पर कौतूहल और आतंक की छाया है और पुलिस कर्मचारियों के मुखमंडल पर अवसर जनित महत्व से मंडित गुरुतापूर्ण गंभीरता की माया। बेनी एक और दीवार से सटकर खड़ा हो गया और आंखों से ही वे चिन्ह टटोलने लगा जिनसे उस घटना पर प्रकाश पड़ सके, जिसके कारण गली में इतनी भीड़ हो गई। बेनी जानता था कि दुलारे की गणना बदनाम औरतों में है। साथ ही वह यह भी मानता था कि नामवर मर्द और बदनाम औरतों को देखने का कौतूहल सभी को होता है, अतः दुलारी के घर पुरुषों की भीड़ लग जाना कोई असाधारण बात नहीं। अचरज की बात इतनी है कि पुलिस क्यों आई है, जितने मुंह उतनी बातें। परंतु सबका निष्कर्ष यही था कि छत की कड़ी में धोती बांधकर दुलारी ने फांसी लगा ली। लाश अब भी वैसे ही लटक रही है। घटना आत्महत्या की है, इसमें किसी को संदेह न था। प्रश्न केवल एक था कि दुलारी ने आत्महत्या की क्यों। इस प्रश्न का उत्तर केवल बेनी के पास था, परंतु घटना जान लेने के बाद बेनी बगल में पान की दौरी दबाए भीड़ में से निकला जा रहा था। गली के मोड़ पर स्थित नल पर पानी भरने के लिए कुछ औरतें एकत्रित थीं। उन्हीं के बीच खड़ा 10 वर्षीय बालक झिंगुर नेताओं की तरह भाषण कर रहा था और औरतें बड़ी तन्मयता से उसका वाक विलास सुन रही थीं। झिंगुर को यह महत्व प्राप्त होने का कारण केवल यह था कि वह भी उसी कोठरी के नीचे वाली कोठरी में अपनी माँ के साथ किराए पर रहता था, जिसमें दुलारी ने आत्महत्या की थी। कंधों पर विख्यात सिर रखने वाले के पैरों की धूल भी माथे पर चढ़ाई जाती है। बालक झिंकुर बड़े पौण भाव से कह रहा था, हमें सब मालूम हो कि ई कसबिन काहे जान दे देलस। टुनुआ के मामले में फेकू से बिगड़ गयी, बस अब बिड़ौती में के पूछी, यही सोच में ऊ मर गयी। कच्चे मुंह पक्की बातें सुनने में औरतों को रस मिलता है, पुरुष चिढ़ जाते हैं। वही बात यहाँ पर भी हुई। बालक झिंगुर की बात पर जवान औरतें मुंह में आंचल ठूस कर हंसने लगी। बुढ़ियों ने गंभीरता से मुस्कुराने के प्रत में अपना पोपला मुंह और भी विकृत बनाते हुए केवल इतना ही कहा, ठीक कहते हो। परंतु आसपास खड़े मर्दों को झिंगुर की छोटे मुंह बात नहीं सुहाई। दो चार ने ताच्छल्यपूर्ण स्वर में कहा, भाग भाग अपना काम देख। बेनी ने भी झिंगुर की बातें सुनी और घृणा से मुंह फेर आगे बढ़ गया। उसके पैर राजघाट किले के खंडहर की ओर बढ़े जा रहे थे। मछोदरी पर राजघाट वाले रास्ते का मोड़ मिला। ठीक मोड़ पर बनी एक दुकान के चबूतरे की ओर बेनी ने देखा और उसका मन विषाद से भर उठा। कुल 12 घंटे पहले रात को 8 बजे किले के खंडहर से लौटते समय थककर दुलारी इस चबूतरे पर 10 मिनट बैठी थी। अब इतनी दूर चली गई कि ख्याल भी उसके पास जाते थकता है। विषाद विषण रहने पर भी बेनी मानो मन और तन की सुकुमारता और नश्वरता पर मुस्कुराया और चबूतरे की ओर से आंखें मोड़ आगे बढ़ा। वह सोचता जा रहा था कि पिछले सांझ कितनी विचित्र थी। वह उस सांझ को गंगा के किनारे किनारे लहरों से यह पूछने चल पड़ा था कि बोलो तुमने मेरी नवड्डा पत्नी को कहाँ छिपा लिया। उसने आदि केशव के घाट पर पहुंचकर यह भी विचार किया था कि उसका पता लगाने के लिए मैं स्वयं गंगा में कूद पड़ूं। वह मड़ी पर से कूदने के लिए सीढ़ियां चढ़ी रहा था कि उसने देखा कि दुलारी घाट की अंतिम सीढ़ी पर बैठी अपनी ही धोती से अपने हाथ पैर बांध रही है। वह ऊपर रुककर देखने लगा। दुलारी अपने हाथ पैर लपेटने के बाद पानी में लुढ़क गई। बेनी ने भी छलांग मारी और वह जब उतराया तो उसके हाथ में दुलारी की चोटी थी। दुलारी को बंधन मुक्त कर सीढ़ी पर लेटा देने के बाद बेनी उससे जरा हटकर बैठा रहा। तत्काल पानी से निकाल ली जाने के कारण दुलारी भी सिर्फ ही स्वस्थ होकर उठ बैठी और बेनी ने उससे तुरंत प्रश्न किया, का हो बरई, तू हमें काहे निकसला। त कौनो गुना नाही कैली दुलारी, डूबे में बड़ा कष्ट होला, हमार मेरउओ डूब के गायब हो गईल, बेनी ने जवाब दिया। अच्छा ना कैला, करेजे में बड़ी आग हो, ठंडी हो जा, दुलारी ने हसत भरे स्वर में कहा। बेनी भी जवाब में कुछ कहने जा ही रहा था कि किसी ने ऊपर से कहा, यह आग पानी से नहीं तिल तिल जिगर जलाने से ठंडी होती है। दुलारी और बेनी दोनों ने एक साथ आंखें ऊपर उठाई, देखा कि चार पांच सीढ़ी ऊपर बड़े ही मैले कुचले प्रधान में एक प्रौढ़ा नारी खड़ी है। उसकी वयस 53 वर्ष थी। अब भी उसके रूप में तेज था, तनकृष होने पर भी चेहरे पर लकीरें बहुत कम थी, अर्थात आग शायद जल्दी जली थी इसलिए एक धुआं कम उठा था। दोनों ही उस अपरिचित नारी की ओर एकटक देखते रह गए। उसने पुनः कहा, अगहन की सांझ है, भीगा रहना ठीक नहीं, मेरे साथ आओ। उसके स्वर में आदेश की गूंज थी। बेनी और दुलारी उसकी उपेक्षा न कर सके और उसके पीछे पीछे चलकर खंडहर के जंगली भाग में एक भूईधरे के भीतर घुसे। भूईधरे भीतर से बहुत प्रशस्त था। कोने में एक कब्र बनी थी। कब्र थी तो कच्ची, पर उस पर चूना पुता हुआ था और फूल बिखरे थे। सिरहाने एक दिया भी टिमटिमा रहा था। बेनी और दुलारी दोनों चित्रवत खड़े रहे। खुटी पर टंगे झोले में से एक धोती निकाल कर दुलारी को देते हुए अपरिचित नारी ने कहा, देखते क्या हो, यह सब यह उस बहादुर का मजार है जो मोहब्बत को खुदा समझता था और जिसने खुदा के नाम पर समर में अपनी जान दे दी। दुलारी और बेनी दोनों के सिर अपने आप कब्र के सामने झुक गए। खंड दो। रास्ता चलते बेनी की आंखों के भूईधरे में रात वाला दृश्य घूम गया। उसने सोचा कि खंडहर की भिखारिन कितनी पढ़ी लिखी है, बात बात में शेर कहती थी। दुलारी के धोती बदल लेने के बाद उसे दोनों से जो प्रश्न किया था वह भी शेर में ही उसने पूछा, जिंदगी से इस कदर बेजार क्यों हूँ, डूब मरने के लिए तैयार क्यों हूँ। यदि बेनी भी शायर होता या उसकी वाणी भी शिक्षित होती तो उसने निश्चय ही उत्तर दे दिया होता कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। और यदि दुलारी का भी बौद्धिक स्तर काफी ऊंचा होता और प्रश्न करने वाली की भांति वह भी शेरो शायरी में माहिर होती तो संभवतः यही जवाब देती, बिन तुम्हारे मैं जी गई अब तक, तुमको क्या खुद को मुझे यकीन नहीं। परंतु यह क्षमता न तो रहने से बेनी ने केवल इतना ही कहा था कि मेरी फुलवारी गंगा की लहरों ने लूट ली, और दुलारी केवल सांस भरकर मौन रह गई थी। इस पर भिखारी ने फिर पूछा कि क्या तुम्हें अपनों को खोकर उनकी कोई ऐसी निशानी हाथ न लगी जिसे तुम अपने प्यारों की एवज प्यार कर सकते, उसे देखकर मरे के नाम पर भी जी सकते। इस पर बेनी ने बताया था कि डूबी पत्नी की खोज करते मैं एक गाय पा गया, और दुलारी ने कहा था कि वह मरने के पहले खद्दर की एक धोती मुझे दे गया। यह सुनते ही वह वृद्धा नारी बड़े कड़वाहट से बोल उठी थी, तब तुम दोनों ही भारी बुजदिल हो, ऐसी नायाब चीजें पास रहते भी जिंदा नहीं रह सकते। दुलारी ने दबी जबान से उसे जवाब दिया था कि दुख में जिंदगी बिताना बहुत ही मुश्किल है, और प्रौढ़ा ने इस जवाब पर बिगड़ कर कहा था, गलत, बिल्कुल गलत, दुनिया में सबसे सहज काम में सुख में भी दुख से मर जाना और सबसे मुश्किल काम है दुख में भी सुख से जिंदगी बिताना। प्रौढ़ा की बात पर दुलारी को हंसी आ गई थी। उसने कहा था कि ये सब कहने की बातें हैं, दुनिया में कौन ऐसा है जिसने दुख में भी सुख से जिंदगी बिताई। दुलारी की इस बात पर प्रौढ़ा जल उठी थी और उसने जवाब दिया था कि दूर कहाँ देखने जाओगी, मुझे ही देखो, किले का इतना बड़ा खंडहर मेरे सिवा और किसका, जब चाहती हूँ कहीं भी घूमती हूँ, कोई रोकने वाला नहीं, जब चाहे सोऊं जब चाहे जागूं, कोई टोकने वाला नहीं, सुबह मुंह पर नकाब डालकर हाथ में कासा लेकर भीख मांगने निकल पड़ती हूँ, जो भी मिल जाता है खुशी खुशी खा लेती हूँ, और उसी कब्र की बगल में बिस्तरा जमा कर अपने अपनों की याद में मजे लेती हूँ, और जो मेरा दुख देखना चाहो तो मेरी राम कहानी सुनो। सुनोगे? बेनी और दुलारी दोनों के सिर हिलाकर आग्रह प्रकट करने पर प्रौढ़ा ने यूं कहना प्रारंभ किया था, मैं ख्वाब की तरह जो रहा हो वह किस्सा है, तबका आतिश जवा था। श्री सीताराम का मंदिर टूटा, महंत सीताराम ने गुहार मचाई और बाबू सीताराम लुट गए। बनारस में 2 दिन के लिए भूकंप आ गया, कितने ही नौनिहाल मिट्टी में मिल गए। 48 घंटे ऐसी आग लगी कि मेरे सुहाग का चमन जल गया, मेरे अरमानों के फूल राख हो गए। उस बवाल को, उस जवाब को, उस तवारीखी हादसे को बनारस में राम हल्ला कहते हैं। बेनी और दुलारी राम हल्ला शब्द से परिचित थे, परंतु वह घटना पूरी पूरी नहीं जानते थे जो बनारसियों की पिछली पीढ़ी की स्मृति में एकदम ताजा थी। उनकी उत्सुकता बढ़ी और प्रौढ़ा कहती गई, मेरे बाप शाह अताउल्लाह एक दरगाह में कद्दी नशीन थे। माँ हिंद आनी थी जो किसी वजह से अपनी जात से निकाली जाने पर मुसलमान हो गई थी। बाप ने मेरा नाम रखा था आसमान तारा। माँ पुकारती थी सितारा, लेकिन मैं होश संभालने पर खुद अपने को जमीन का चांद समझती थी। चैत के महीने में मैं पैदा हुई थी। चैत के महीने में ही मेरी शादी हुई और उसी चैत के महीने में मैं बेवा हो गई। अम्मा जान कहा करती थी कि इसी चैत के महीने में राम जी पैदा हुए थे। समय का आवरण जैसे भेद कर भूतकाल को प्रत्यक्ष सा देखते हुए भिकारिन कहे गई थी, हाँ तो चैत के महीने में ही जबकि मेरी उम्र पूरी 15 साल थी मेरी शादी हुई। मेरे शौहर शाह शहाबुद्दीन ऐसे कल्ले ठल्ले के जनाब थे कि जो उन्हें देखता देखता ही रह जाता। कल मेरी शादी का पहला दिन था। कमरे में अपने सूरज सौहर के साथ चांद से दुल्हन बनी बैठी थी। सड़क पर किसी के चिल्लाने की आवाज आई। एक कुंदन बदन जवान हाथ भर लंबी शानदार दाढ़ी बढ़ाए दौड़ता जाता था और कहता था कि बनारस के हिंदुओं और मुसलमानों सुनो, 80 पर पानी कल बिठाने के लिए श्री सीताराम का प्राचीन मंदिर तोड़ा जा रहा है। आज मंदिर टूट रहा है, कल मस्जिद टूटेगी, बचाओ बचाओ बचाओ। इतना कहने के बाद भिखारी ने सांस ली थी और फिर कहना आरम्भ किया था। उस आदमी की जिसका नाम मुझे बाद में मालूम हुआ था महंत सीताराम था। दिलकश आवाज सुनकर हम सभी तड़प उठे। अम्मा जान दौड़ी हुई आई और बोली, बेटा साहब देखो तो क्या बात है, मेरे शौहर जिन्हें मैंने प्यार से साह सब कहना शुरू किया था फौरन ही बाहर चले गए। अम्मा जान मुझसे कहने लगी, बेटा सितारा यह बात बहुत बुरी है, राम भी तो खुदा का ही नाम है, सच पूछो तो इश्क मोहब्बत को ही खुदा कहते हैं। माँ की बात सुनकर मेरे बाप ने भी हंसते हुए की ताई की और कहा, अल्लाह मजनू को लैला नजर आता है। मेरे शाह सवाब भी गली से लौट चौखट पर खड़े थे, बातें सुन रहे थे। उन्होंने सिर्फ इतना ही पूछा था, अम्मा जान इजाजत है ना? बाबा और अम्मा ने फौरन कहा, हाँ यह खुदा का काम है, और दोनों कमरे से बाहर निकल गए। शबाब ने भीतर आकर मुझसे पूछा, तुम्हारी भी इजाजत है ना? एक बार तो मैं उनका सवाल सुनकर सन्न हो गई और फिर हिम्मत बांध कर इतना कहा, मेरा ठिकाना। सौहर ने अपने गले में पड़ी गुलाब की माला मेरी गर्दन में डाल दी और खुद चले गए। यह कहते कहते भिखारिन की आंखों में आंसू भर आए थे। उसने ठंडी सांस ली थी और फिर कहा था, फिर क्या था, बनारस के हिंदुओं और मुसलमानों ने 80 घाट पर रखी बड़ी बड़ी मशीनें उठाकर गेंद की तरह गंगा में फेंक दी, उसके बाद लूट होने लगी। लोगों ने समझा कि मंदिर तोड़वाने में भदैनी के रईस बाबू सीताराम का हाथ है, भीड़ तो भीड़ होती ही है, लोग उनके मकान पर टूट पड़े। उस वक्त मेरे शौहर ने कहा कि भाई लूट में हम शामिल नहीं, और सभी मुसलमानों को लेकर वह वहां से हटने ही वाले थे कि खुदा जाने किसने गोली चला दी और गोली मेरे शौहर को लगी। भीड़ भाग निकली मगर वह किसी तरह गंगा किनारे पहुंचे और वहीं गिर पड़े। उसी रात मैं उन्हें खोजने निकली बिना माँ बाप से पूछे। दरिया किनारे उन्हें बेहोश पड़ा पाया, किसी तरह उन्हें उठाकर एक नाव पर लाद दिया और उन्हें इस भूधरे में ले आई। बहुत चाहा कि उन्हें बचा लूं, लेकिन अफसोस उसी रात उन्होंने दम तोड़ दिया। वह रामनवमी की रात थी, सारी रात जागकर मैंने अपने हाथों उनकी कब्र बनाई। देखो, भिखारिन की बात सुनकर बेनी और दुलारी की निगाह कब्र की ओर उठ गई थी, जिस पर भिखारिन ने हंसकर कहा था, वह नहीं यह देखो, और अपने गले में लटकते हुए डोर से बंधी एक डिबिया दिखाई। उसे खोला, उसमें फूलों का चूरा पड़ा था। भिखारिन ने उसमें से वह सूत निकाला जिसमें कभी वे फूल गुथे गए थे। उसे दिखाते हुए उसने दुलारी से कहा था, देखो इस सूत के बल पर मैंने अपनी दुखी जिंदगी सुख से बिताई और तुम्हारे पास तो समुची धोती है। रास्ता चलते हुए बेनी ने मन ही मन कहा, सचमुच दुलारी ने धोती का उपयोग फांसी लगाने में खूब किया।